मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 16 मार्च 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपसे एक अजीब तरह के सुख की बात करने जा रहा हूं। देखिए, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है अजीब तरह का सुख। सामान्यतया जो सुख होते हैं हम सब उन्हें जानते हैं क्या, बल्कि अनुभव के स्तर पर उन सबसे गुजरते ही हैं और हम सब ने सुख की एक सामान्य लिस्ट बना ली है। यहां सामान्य लिस्ट कहने का मेरा मतलब है फ्रेंड्स कि जो सभी के लिए ऑलमोस्ट सुख होते हैं। सबको घर चाहिए, कपड़े चाहिए, परिवार का एक अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मतलब ये सारे तत्व सुख की सूची में शामिल हैं। तो ये तो सामान्य सुख हो गए। मैं सामान्य सुख की बात करने नहीं जा रहा हूं, उन सबसे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। मैं एक ऐसे अजीब सुख के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको लगेगा यार कि ये भी कोई सुख होता है। देखिए, मैं साधु संत महात्मा जो अपने शरीर को तपाकर दुख पहुंचाकर सुख का अनुभव करते हैं उसकी बात करने नहीं जा रहा हूं, उसके बाद उससे भी आप परिचित हैं। यह कुछ थोड़ा सा अलग ही किस्म का है और अलग किस्म का इस मायने में मित्रों एक कहावत है कि आ बैल मुझे मार, सुनी होगी आपने ये कहावत, आ बैल मुझे मार। बैल को बुला रहे हैं कि आ करके मुझे तुम मारो। लेकिन ये जो सुख है ये कुछ उल्टे किस्म का सुख है। ये सुख इस मायने में उल्टा है कि इसमें वो आदमी बैल के पास खुद जाता है और कहता है कि मुझे मार। मतलब वो बैल को बुला नहीं रहा है, बैल को आने की तकलीफ भी नहीं देना चाह रहा है, बल्कि बैल के पास खुद पहुंच करके कह रहा है कि ले तू मुझे ढूंस, मार भी नहीं बल्कि ढूंस, जो तू मेरे साथ कर सकता है कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरे पास आ गया हूं। तो मित्रों यह अजीब सुख कुछ इस तरह का है कि यहां भोपाल शहर में ही एक वृद्धाश्रम है, नाम उसका कुछ और है, मैं नाम जनरली अवॉइड करता हूं, आप सब जानते ही हैं। वहां एक महिला थी, वो काम करती थी और उन सब व्यवस्था वगैरह सब देखती थी। वो जो वृद्धाश्रम है एक संस्था का आश्रम है। दरअसल फिर हुआ यूं कि जो संस्थाओं में सामान्यतया होता है कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ शिकायतें हुई होंगी, कुछ विवाद हुए होंगे, कुछ मतभेद पैदा हुए होंगे, उन महिला को उस वृद्धाश्रम से हटा दिया गया। क्योंकि मेरी पत्नी उस वृद्धाश्रम से जुड़ी हुई है तो मैं भी बीच बीच में जाता रहता था और मेरी पत्नी आकर के वहां की बातों के बारे में कुछ बताया भी करती थी, तो उन महिला को मैं जानता हूं और वो महिला बड़ी ही समर्पित महिला थी। इस मायने में कि वो वहीं रहती थी, उन्हें उनके परिवार को वहीं एक कमरा दे दिया गया था छोटा सा, अपने अपने पति और अपनी बच्ची के साथ वो वहीं रहती थी और पूरा समय वहीं खपाती थी, शुरू से लेकर के और रात तक का समय। हम लोगों को ऐसा लगता था कि वो बहुत ही समर्पित महिला है और लगता भी था और लोग भी उनको बहुत मानते थे। खैर मित्रों, जो भी विवाद हुए हों उनको वहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो सच पूछिए तो मेरे जैसे जो थोड़े से लोग थे, जो थोड़े से यूं कह लीजिए कि जरा उल्टी बुद्धि के ही होते हैं, वो उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। उन्हें समझाना इसलिए पड़ता था क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा दुखी थी, वहां से जो निकाली गई वो उससे बहुत ज्यादा दुखी थी। इस बात से दुखी नहीं थी कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाया गया, उनकी चीजों को ठीक नहीं समझा गया, इससे वो उतनी ज्यादा दुखी नहीं थी। वो दुखी इस बात से थी कि अब वो करेंगी क्या, करेंगी क्या से भी मतलब ये नहीं कि वो बेरोजगार हो गई हो, वहां उनको कोई रोजगार नहीं मिला हुआ था, बहुत कम सैलरी मिलती थी, बस रहने की खाने की सुविधा थी। मतलब सच पूछे तो मुझ जैसे लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य भी होता था, तकलीफ भी होती थी कि यार इसमें गुजारा कैसे होगा, इनके छोटे बच्चे भी हैं, उनको पढ़ाना है, शादी ब्याह करनी है, कैसे गुजारा होगा। लेकिन वो रहती थी और सबसे बड़ी बात है कि वो बड़े मस्त रहती थी, मतलब कोई शिकायत नहीं करती थी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर। और दूसरी तरफ कि उनके जो भाई हैं वो भाई बहुत धनी है, काफी पैसे वाले लोग हैं। उनके भाई कहते थे कि तुम आ जाओ, तुम ये काम कर लो, तुमको हम मकान दे देते हैं, मकान हमारे पास है, इसमें तुम रहो। लेकिन वो कहती थी कि नहीं, मेरा घर यही है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो इसी से आप उनके समर्पण का अनुमान लगा सकते हैं। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तो यह है कि भाई इनको निकाला कैसे गया, क्यों गया, नहीं निकाला जाना चाहिए था क्योंकि ये तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, और वहां के जो लोग थे, जो वृद्ध थे, वो भी इनको बहुत प्यार करते थे, ये तो सुनने की बात नहीं है मित्रों, ये हमने देखा था। अब वहां से वो निकाल दी गई, अब वो भाई बेहद दुखी है, इतनी दुखी कि वो बीमार पड़ गई। अब क्या किया जाए, डॉक्टर्स को भी दिखाया गया तो उन्होंने यही कहा, डॉक्टर्स ने बताया कि ये मन से बहुत परेशान है और इनके लिए आप काम का इंतजाम करा दीजिए। दूसरे काम बताए गए, इनके लिए बताए गए, इनके हस्बैंड के लिए बताए गए, नहीं मुझे तो बस वही अच्छा लगता है, अब क्या किया जाए, वहां आप जा नहीं सकते। तो मित्रों फिर इनके भाइयों ने इनके लिए एक वृद्धाश्रम खुलवा दिया, एक बड़ा सा मकान किराए पर लिया जहां 25-30 लोग रह सकते थे, और कहा कि लो तुम अब इसे संभालो। और मित्रों वहां उन्होंने अपना वृद्धाश्रम शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा थी, लोग इनको जानते थे इस मायने में, तो वृद्ध आने शुरू हो गए और बहुत जल्दी उनका जो घर था वो भर गया, भरना ही था, हम लोगों को इसका पूरा भरोसा था। और फिर से उनका सारा का सारा काम उसी तरह से शुरू हो गया, वो उसमें रम गई, लग गई और खुश रहने लगी। दोस्तों इसे ही मैंने कहा है अजीब तरह का सुख। अब आपको इसमें कोई बात अजीब नहीं लग रही होगी, है ना, सुनने से तो देखिए सामान्य सी ही बात लगती है, लेकिन जब आप उन्हीं चीजों को अपने ऊपर ढालें, या यूं कह लीजिए कि उनको अनुभव के स्तर पर लेकर के आए, अनुभव के स्तर पर आप गुजरे, संवेदना के धरातल पर उनसे जुड़े, तब आपको पता लगेगा कि यार ये कितनी बड़ी चीज है। यह इस मायने में बहुत बड़ी चीज है मित्रों कि वहां जो वृद्ध रहते हैं, वहां ही नहीं मतलब कहीं भी वृद्धाश्रम में आप जाइए, खासकर मैं वहां के वृद्धाश्रम की बात कह रहा हूं जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं, मैं तो बहुत कम जाता हूं, इनफैक्ट मेरी पत्नी काफी जाती रहती है। उन सब के अलग अलग तरह के कहानी किस्से हैं, अलग अलग तरह के कहानी किस्से। उनमें मैंने पाया कि आर्थिक स्थिति से परेशान होकर के कोई यहां नहीं आया है कि उन्हें रहने के लिए घर या छत नहीं मिल रही है। इनफैक्ट वो यहां आने का उनका जो मूल कारण रहा है वह है उनके बच्चों के द्वारा उन्हें स्वीकार न किया जाना। ठीक है, बच्चों के द्वारा क्यों नहीं स्वीकार किया गया है, वह उसका जो मूल कारण लगा, दूसरे और भी बहुत से कारण होते हैं, वह है उनका स्वभाव। उनका स्वभाव कुछ इतना कटु है, इतना इगोइस्ट है, या कह लीजिए कि इतना झगड़ालू किस्म का है कि उनकी वहां पटरी नहीं बैठी। देखिए मैं सबके बारे में ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ के बारे में ऐसा अनुमान लगा, खासकर उनके यहां के भी स्वभाव को देख करके जब हम लोगों ने उन लोगों से बातचीत की। अब जब वो यहां आ गए हैं तो उनका वह स्वभाव यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है। देखिए अब जो सबसे बड़ी बात है मित्रों, जो अजीब सुख है, जो अजीब बात है कि इन्हें उनके अपने ही बेटे बेटियां बहू रखने को तैयार नहीं है। वो यहां आ रहे हैं और उनके जो कटु स्वभाव से उत्पन्न जो स्थितियां होती हैं वो यहां भी पैदा हो रही हैं, लेकिन ये जो महिला है ये उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है, ये उन्हें झेलने के लिए तैयार है, उनको उनके बीच में खूब मजा आता है। हम लोगों ने यहां तक पाया है फ्रेंड्स की किसी की डेथ हो जाएगी, अब वृद्ध हैं, किसी की डेथ हो गई तो अब आप देखिए कि उनका जो दाह संस्कार होना है, सब कुछ होना है, वो यही कर रही हैं। तो कभी कहीं जाती रहती हैं, कभी कहीं जाती रहती हैं, वृद्ध शरीर है, बीमार पड़ते रहते हैं लोग, तो डॉक्टर को बुला रही हैं, तो फिर या डॉक्टर को इनको लेकर के डॉक्टर के पास जा रही हैं, किसी को अस्पताल में दिखाने जा रही हैं, सुबह से शाम तक लगातार इसी काम में लगी हुई हैं। किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उनके आपस के भी विवाद हो जा रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा एक कुनबा है और ये विविध लोगों का बसा हुआ कुनबा है, विविध लोगों से बना हुआ कुनबा है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। दोस्तों वो अद्भुत मेला है, अद्भुत मेला है, और उस मेले में वो रमी हुई है, और इस तरीके से रमी हुई है मित्रों कि जब उनसे वह चीज छीन ली गई, सोच करके देखिए, तो बुरी तरह से टूट गई और उन्होंने ये फिर डिमांड की और इस और सोचिए कि जबकि उनके पास दूसरे बहुत अच्छे विकल्प थे, बहुत अच्छे विकल्प थे मित्रों, और इसमें झूठ कतई कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनका मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल इसके प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इसके जरिए आप बताना क्या चाह रहे हैं, मैं बताना कुछ भी नहीं चाह रहा हूं मित्रों, मैं बताना केवल इस किस्से को चाह रहा हूं, और इस उनके इस काम से इतना लोग इतने प्रभावित हैं यहां के भी और बाहर के भी, कि आपने आपको ध्यान होगा कि लगभग शायद तीन एक साल पहले की बात होगी, आमिर खान साहब का एक सीरियल आया था सत्यमेव जयते, है ना, जिसमें वो अलग अलग इश्यू को लेकर के उस पर बात करते थे और बहुत पॉपुलर हुआ था सत्यमेव जयते, हर रविवार को आता था, उसमें इनका लिया गया था, आमिर खान बकायदे आए और उन्होंने इस पूरी स्टोरी को नरेट किया। तो दोस्तों इसके जरिए सच पूछे तो मैं केवल एक छोटी सी बात आप सब तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो ये है कि सुख की कोई बंधी बंधाई परिभाषा नहीं है, हम सबको अपने अपने लिए सुख की तलाश करनी पड़ती है, किसी को कुछ में सुख मिलता है, किसी को कुछ में सुख मिलता है, कभी ये बात नहीं माननी चाहिए या इसी के पीछे नहीं भागना चाहिए कि वह सुखी है, वह सुखी इसलिए है क्योंकि वह बड़े मकान में रह रहा है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास खूब धन है, वो बहुत बड़े पद पर है, नॉट एट ऑल, उनके पास सुख के अपने तत्व हैं, वो अपने ढंग से सुख को परिभाषित करते हैं, और मुझे लगता है मित्रों हम सबको भी अपने अपने ढंग से अपने अपने सुखों को परिभाषित करना चाहिए, बस केवल इस स्टोरी के माध्यम से यही मैसेज देना मेरा उद्देश्य था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आज शुरू में ही कहा कि आज शुक्रवार है, अब दो दिनों तक आप सबसे भेंट नहीं हो सकेगी, दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे, तो दोस्तों अब इन दो दिनों के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।